ओम शांति। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बाबा के साथ, परमात्मा के साथ खुश है? परमात्मा मिला है सबको, अनुभूति की है? जीवन खुशियों से भरा हुआ है, बस नजर बदलने की जरूरत है। हर आत्मा के जीवन में भरपूर खुशियां हैं। माना तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। सब हमारे ऊपर है, हम किस प्रकार समझते हैं। अरबपति ने समझा तो उसके पास कुछ है, कुछ नहीं भी है। दिखने में बाहर से दिखावा होता है, लौकिक का, लेकिन जो अलौकिक है हर किसी के पास भरपूर है। इतना है कि उसकी तुलना किसी भी आत्मा के साथ नहीं हो सकती। जो आपका है वह आपका ही है, वह हमारे पास नहीं आ सकता, आप ही के पास है। बस हुआ क्या है, हमारे पास जो है उसे हम भूल गए हैं और जो नहीं है उसे खोजने लगे हैं। अगर यह खोज रुक जाए और जो है वह देखना शुरू करे तो पता चलेगा हमारे पास कितना है। तो इस यात्रा में जो दौड़ता है वह थकता है, उसे कुछ नहीं मिलता, और जो रुक जाता है वह आनंद खुश हो जाता है और उसे सब कुछ मिल जाता है। यह यात्रा रुकने की है। बहुत सालों से हम बस दौड़े जा रहे हैं, कहां दौड़े जा रहे हैं किसी को पता नहीं। थोड़ा रुक लीजिए, रुक कर चेक कीजिए अपने आप को कि रुकने के बाद क्या मिलता है। दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ माना मन बुद्धि की दौड़। शरीर की दौड़ तो बाहरी है, लेकिन मन बुद्धि जितना दौड़ेगी उतना थकेंगे, और मन बुद्धि जितना रुकेगी उतना सुख पाएंगे। जहां है वहां रहना सीखिए, वहां रुक जाइए। बहुत बार क्या होता है, हम जीना तो चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते। आज यहां बैठे हैं हम, 10 मिनट ही से अगर किसी के पास जल्दी है, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी बात है, तो उस 10 मिनट के लिए ही सही हम जहां है वहां रहना सीख लेते हैं। सुख वहां है। हम कहां रहते हैं, या तो भूतकाल में रहते हैं या फिर भविष्य में रहते हैं। हम सोचते रहते हैं 12 बजे के बाद यह काम करना है, 11 बजे के बाद यह काम करना है। भोजन करने भी बैठे हैं, फिर भी भोजन के 10 निवाले, 4-5 निवाले जो भी हैं, वह भी सुख चैन से नहीं खा पाते। जीवन क्या है, जीवन वर्तमान है। अब जहां हो वही जीवन है। आज हम जहां खड़े हैं यही जीवन है, और यह यात्रा जहां समाप्त हो जाती है यह मृत्यु है और कुछ नहीं। लेकिन हमने यात्रा कैसी पूरी की। हम जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जहां हैं वहां नहीं रहते। अगर हम जहां हैं वहां रहे तो खुशियां सदाकाल की है। आज हम यहां बैठे हैं, क्लास हो रहा है, कितना भी सोचे अमेरिका की सेवा करनी बाकी है, कलकत्ता की बाकी है, दिल्ली की बाकी है, यहाँ बैठकर वहां की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ जिनके साथ बैठे हैं उनसे वार्तालाप होना, उनसे स्नेह मिलन होना जरूरी है। मना हम जहां जिन आत्माओं के साथ रहते हैं अगर उस समय उनके साथ रहना सीखे तो जीवन की यात्रा पूरी हो जाती है। ज्यादातर हमारे जीवन भूतकाल और भविष्य में ही चले जाते हैं, सोच में ही चले जाते हैं, या तो भूतकाल की बातों के बारे में सोचते रहते हैं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर भविष्य में सोचते रहते हैं। तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, वर्तमान में आना पड़ेगा। वर्तमान ही जीवन है। जीवन अगर जीना चाहते हैं तो वर्तमान ही है। दोपहर में मेरे थाली में कौन सा भोजन होगा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अभी इस समय को क्या एंजॉय कर पा रहा हूं, इस समय का मैं आनंद ले पा रहा हूं। अगर हम इस समय का आनंद नहीं ले पाते, ये बात क्यों बता रहे हैं समझ लीजिए। जिस व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और उसे 100 रुपए यूज करना, उसका इस्तेमाल करना नहीं आता अच्छे से, कैसे इस्तेमाल करें, तो उसके पास 1000 रुपए आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वर्तमान के इस जीवन को जहां भी है, घर कैसा भी है, शरीर किस प्रकार का भी है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, शरीर है किस प्रकार का भी है, धन कैसा भी है, लेकिन अगर उसे हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, हमारे कोई कंप्लेंट्स है उन सभी बातों के लिए, तो हमें उससे अच्छा नहीं मिल सकता। हम लाख चाहे हमें इससे अच्छा घर मिले, इससे अच्छा परिवार मिले, लेकिन जो मिला है उसे अगर हम हैंडल नहीं कर पाते तो उससे अच्छा, क्योंकि 100 रुपए संभालने की हमारी ताकत नहीं है, तो उसे 1000 रुपए देकर फायदा क्या होगा। अब सोच सकते हैं, जो परिवार हमारा है, जिस प्रकार का हमारा शरीर है, उसको हम नहीं चला पाते। हर बार अगर हमारी कंप्लेंट्स ही रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर वाले ही ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ ही धन की कमी क्यों है, मेरा घर ही ऐसा क्यों है, मतलब उसे हम संभाल नहीं पाते। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अच्छी बातों में उस 10 रुपये को इस्तेमाल करना जानते हैं अच्छी तरीके से, उसके पास लाख आने में समय नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है प्रकृति आपको उतना ही देगी जितना आप संभाल पाते हैं, जितना संभाल पाते हैं। कोई बहुत गरीब है, भगवान से हमेशा कहता रहता है कि मुझे अगर बड़ी लॉटरी लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, 1-2-4 करोड़ की, 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मेरी गरीबी निकल जाएगी। लेकिन उसके पिता को पता है, परमात्मा को पता है, तेरी 10 करोड़ संभालने की ताकत नहीं है। जिस दिन 10 करोड़ मिले समझ जाएगा, उसी दिन चला जाएगा, क्योंकि ताकत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। जैसे जीवन को समझते जाएंगे ताकत बढ़ती जाएगी। जो आपके पास है सबसे बड़ी बात, उसका स्वीकार कीजिए। आपने कुछ किया पिछले जन्म में, उससे पिछले, उसी का रिटर्न आपको अभी मिला है, तो उसे स्वीकार कीजिए। जब तक हम रिजेक्ट करते रहेंगे स्वयं को, परिवार को, दूसरों को, घर की चीजों को, वस्तुओं को, तब तक हमें अच्छाई नहीं मिल सकती। जो है आपके पास, जो कुछ है वह आपका है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद कोई बात नहीं चलेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज में अब देखिए क्या एनर्जी होती है। कहते हैं ना कि भोजन को कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी सामने आया उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत खाइए, थाली में रहने दीजिए। उससे आपको प्रॉब्लम है मत खाइए, थाली में रहने दीजिए, लेकिन रिजेक्ट नहीं कीजिए, भोजन को दोष नहीं दीजिए। तो कहना ही है, हम बचपन से, आप तो सभी अनुभवी हैं, हम सब ने हमारे माँ बाप से लौकिक गुरुओं से सीखा है भोजन और पैसे का कभी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। पैसे अगर कोई फेंक कर देता है तो हम उसको डिसरिगार्ड समझते हैं। भोजन की थाली ऐसे ढकेल देता है भोजन की, तो हम उसका अपमान समझते हैं। लेकिन प्रकृति की हर एक चीज, हर आत्मा कितनी शुद्ध और पवित्र है। हमें भोजन और पैसे बहुत कीमती लगते हैं, उसकी अहमियत ज्यादा लगती है, इसलिए उनको बहुत मान सम्मान देते हैं। हम कहेंगे आपके जूतों को भी लात मारना डिसरिगार्ड है, बल जूते पैर में पहनते हैं लेकिन उसको लात मारना भी डिसरिगार्ड है। तो अब सोचिए, इन सभी चीजों को अगर रिजेक्ट करना डिसरिगार्ड है तो हम खुद को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, हर दूसरी आत्माओं को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। जो भी है हमारे कर्मों से ही हमें मिला है, जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना जीवन सुखी होगा, जितना रिजेक्ट करेंगे, जितनी कंप्लेंट्स बढ़ेगी उतना आप दुख में जाएंगे। कल एक कहानी बताई थी क्लास में, फिर से उस कहानी को दोहराते हैं। एक फार्मर था, किसान था, उसके पास एक बैल था, बहुत अच्छा था, हट्ठा कट्ठा, उससे वो खेती करता था। गांव के लोग उन्हें बोलते थे कि कितना अच्छा बैल है आपके पास, कि अब की सारी खेती हो जाती, खेती का सारा काम हो जाता है। फिर भी लोग उनकी वाहवाह करते थे, वो कुछ नहीं मन के ऊपर लेते थे, शांत रहते थे। एक दिन बैल मर गया किसी कारणवश। वही लोग आ गए और बोलने लगे, कितना बुरा हुआ आपके साथ, आपका इतना अच्छा बैल मर गया, अभी क्या करेंगे, कोई और चारा भी नहीं आपके पास। फिर भी वो शांत रहे, कोई विचार नहीं, क्योंकि दूसरे ने कही हुई बात है, हमारे हाथ में है विचार करना है या नहीं करना है। तो वो बोलते रहे, फिर भी वो शांत रहे। कुछ दिन के बाद उनके पास एक जंगली घोड़ा आ गया, अपने आप आ गया जंगल से। घोड़ा तो और मजबूत होता है और काम अच्छे से करेगा। तो फिर से लोग आ गए, बोलने लगे, अरे तुम्हारी किस्मत तो चमक गई, बैल गया लेकिन कितना अच्छा घोड़ा मिल गया, अभी खेती के काम तो और तेजी से होंगे। फिर भी वो स्थिर रहे, कोई रिएक्शन नहीं। थोड़े दिन के बाद वह घोड़ा भी चला गया जंगल में वापस। तो लोग फिर से बोलने लगे कि कितना बुरा हुआ आपके साथ, किस्मत साथ नहीं दे रही। कुछ नहीं सोचा। फिर कुछ दिन के बाद वह एक घोड़ा और 10 घोड़ों को लेके आया। फिर लोग आ गए, फिर वाहवाह करने लगे, फिर भी कुछ नहीं स्टेप, मतलब स्थिति देखिए। फिर एक दिन खेती के काम करते करते घोड़े ने लात मारी और उनके बच्चे की, एक बच्चा था 24-25 साल का, टांग टूट गई, प्लास्टर हो गया। लोग फिर से बोलने लगे कि कितना बुरा हुआ, एक ही बच्चा और वो भी ऐसी हालत में पड़ा हुआ है घर में। फिर भी कुछ नहीं सोचा, जैसे कि वैसे। कुछ दिन के बाद मिलिट्री आई गांव में, मिलिट्री के लिए जवानों की जरूरत थी। गांव में जितने जवान थे उनको उठा के लेके गए जबरदस्ती, इनके बच्चे को लगा हुआ था नहीं लेके गए। माना क्या होता है, अगर हम किसी भी बात में सोचते नहीं तो लिटरली उसमें कल्याण ही है, पूरा कल्याण है, सोचकर हम उस बात को बिगाड़ते हैं। इसलिए और एक बात रिपीट करना चाहेंगे, बुद्ध जी ने बहुत अच्छा कहा है, समस्या आपकी समस्या नहीं है, समस्या आपकी समस्या नहीं, पर समस्या के लिए जो आपकी रिएक्शन है प्रतिक्रिया है वह आपकी समस्या है। सोचा तो मेरा 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, अगर नहीं सोचा तो मैं अभी भी अरबपति हूं। आना जो आना था वो आया 10 करोड़, जब जाना था अब चला गया। अगर हम ही नहीं बचने वाले, हम भी एक दिन आए हैं एक दिन जाने वाले हैं, तो यहाँ की कौन सी चीज बचेगी जिसके लिए हम इतना माथा मारते हैं। ये सारी बातें कहने का कारण एक ही है, वर्तमान में आ जाइए, जो आपके पास है उसको स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना ही सब कुछ है। स्वीकार करने से आपके जीवन में बढ़ोतरी होती जाती है अपने आप। अब कुछ दिन इसका प्रयोग करके देखिए, कम से कम हम कहेंगे 1 मास के लिए कोई कंप्लेंट नहीं। 1 मास के लिए आपके साथ जो कुछ हो रहा है, खाना पीना है, उठना सोना है, घूमना फिरना है, पुरुषार्थ है, खेती बाड़ी की काम है, नौकरी है, जो भी है, कोई कंप्लेंट नहीं 1 मास तक। 1 मास के बाद अब पूरे बदल जाएंगे। जो व्यक्ति 1 मास पहले था वह आप नहीं रहेंगे, 1 मास बाद वाला व्यक्ति कोई और होगा, क्योंकि वह पूरा बदल चुका एक छोटी सी धारणा से। तो ये छोटी धारणा हम हमारी जीवन में धारण करेंगे, जो कुछ है उसका स्वीकार करेंगे, किसी भी बात को रिजेक्ट नहीं करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद होता क्या है आपको बताते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता, साइड में रख दीजिए, कहिए कि ये मेरे को जच नहीं रहा है, मुझे थोड़ा सा जच नहीं रहा है, मैं कोई और लेना चाहता। पर ये अच्छा नहीं है कहना, ये गलत बात है, ये वस्तु ठीक नहीं है, ये कहना गलत होगा। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर स्थान अपने अपने स्थान पर सही है, अपने अपने स्थान पर सही है। देखिए कब जब कभी हमसे गलती होती है, ज्यादातर जब गलती होती है हम अपने आप को सही करने का प्रयास करते कि मैं राइट हूं, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। गलती है फिर भी हम कहते कि मैं राइट हूं। सोचिए जब गलती हुई तब कहते हैं राइट हूं, तो अगर जब राइट है तब कहेंगे राइट हूं, तो कितना अच्छा परिवर्तन होगा आप सोच सकते हैं। तो पहले अपने को स्वीकार कीजिए, कैसे भी शरीर है कंप्लेन नहीं कीजिए, मेरे शरीर में यह प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम है। होता क्या है, अगर आप आपकी बातें, आपका सुख या दुख किसी और को बताते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दुनिया कहती है दुख को शेयर करने से दुख घटता है, हम कहते हैं दुख को शेयर करने से दुख बढ़ता है। अगर आप आपका दुख किसी को बताएंगे तो आपका दुख बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अगर हमने कहा आपको, आप में से किसी को, कि आज हमारा बदन दर्द कर रहा है या सिर दर्द कर रहा है, आपने मन में संकल्प लाया कि भाई जी का सिर दर्द हो रहा है, तो आपसे कौन सी एनर्जी आई हमें, दर्द की नेगेटिव एनर्जी। आपने और 4 लोगों को कहा, उन 4 ने भी विचार किया अरे भाई जी का बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, 4ों ने भी कौन सी एनर्जी भेजी, नेगेटिव। तो सिर दर्द बढ़ेगा या कम होगा, नहीं। अगर आपने बोल दिया कि दर्द कर रहा है, मतलब संकल्प, ऐसे व्यक्ति से कभी शेयर नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति हमारे संकल्प को ढिंढोरे के रूप में गांव में बता दे, तो लोगों का संकल्प चलता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम हुआ है और वो सारा गांव में चला जाता है, अब देखिए प्रॉब्लम बढ़ जाता है अपने आप, क्योंकि सारे गांव ने आपके लिए नेगेटिव सोचा कि इनके घर में प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर यही बात हम बाबा को बताते हैं तो कम हो जाएगी। माना आप आपका दुख उसी से शेयर कीजिए जो कम कर सके। यह कोई आत्मा नहीं जो आपका दुख कम कर सकेगी। और सुख बताने से क्या होता है, अगर आपने बहुत अच्छी गाड़ी ली, जब हम बताते हैं तो सूक्ष्म अहंकार होता है, मेरे पास कोई नई चीज आई, मुझे कुछ अच्छा मिला, मेरा अच्छा हुआ, तो शुद्धता से नहीं बताते, हम बताते एक अहंकार की ओर जाते, और अहंकार के कारण जिसको सुना रहे उसके मन में हमारे प्रति जिलसी तैयार होती है। तो उसने कौन सी ऊर्जा दी? नेगेटिव। अभी जो गाड़ी हमें एक साल सुख देने वाली है, 6 महीने में उसका सुख खत्म हो जाता है, क्योंकि उन सबके नेगेटिव संकल्प चले हमारे प्रति। क्या संकल्प चले? अरे इनको मिल गया, हमें नहीं मिला है। कभी अपने अनुभव किया होगा, दीदी जी ने अगर प्रश्न पूछा कि किसका योग बहुत अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। अगर आपने हाथ उठाया, दूसरे दिन से योग खत्म। क्यों? क्योंकि सबने आपके प्रति संकल्प चलाया, इनका योग बहुत अच्छा है, मेरा कुछ नहीं है, मतलब अच्छी ऊर्जा नहीं भेजी। तो आज दुनिया में किसी को भी आपका सुख या दुख नहीं बताइए, आप ही के पास रखिए या फिर बाबा से शेयर कीजिए। अगर दुख बाबा से शेयर करते हैं घटेगा, सुख शेयर करते हैं बढ़ेगा। लोगों से शेयर करते वक्त हम हमारी स्थिति में नहीं होते, हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मेरे पास गाड़ी आ गई, सूक्ष्म अहंकार होता है, हमारी है, हम एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं दूसरी भाषा में नजर लगना, कहते ना नजर लग गई किसी की। नजर माना कुछ नहीं, निगेटिव संकल्प चले किसी और के हमारे प्रति, इसको कहते हैं नजर, सिंपल। तो कहना यही है, जो हमारा है किसी को नहीं बताना, हमारे पास ही रखना है। दुख होगा तो कम होता जाएगा, सुख होगा तो बढ़ता जाएगा, और वर्तमान में चलना है जितना हो सके, जहां है वहां रहने की कोशिश कीजिए। नहीं तो भूत और भविष्य के चक्कर में जो है वह भी खो जाएगा, मतलब हम जी नहीं पा रहे। आधे घंटे के बाद भोजन करना है, इस चक्कर में आज का जो अभी का समय है यह भी हम गवा रहे हैं, तो आनंद लीजिए। जीवन का दूसरा नाम है आनंद। जीवन सिर्फ आनंद लेने के लिए ही मिला है, दुख के लिए नहीं है। दुख बाहर से आता है, दुख हमारे अंदर नहीं है। जब तक आप दुख क्रिएट नहीं करते, समझने में दुख है, अगर समझेंगे तो किसी ने प्यार से बोला तो भी दुख लगेगा, प्यार से लेकिन थोड़ा जोर से बोला तो भी दुख लगेगा, और नहीं समझेंगे लेकिन जोर से किसी ने गाली भी दी तो भी कुछ नहीं लगेगा, लेने वाले के ऊपर है। जैसे रस्सी से पानी भी निकालते हैं वेल से, उस रस्सी से फांसी भी लगा सकते हैं, अपने ऊपर है। कोई आत्माएं हैं जहर थोड़ा लेंगे लेकिन उनके लिए औषधि बनेगी जहर, कोई है अमृत भी पिएंगे लेकिन मर जाएंगे उससे। सब कुछ हमारे ऊपर है, हमारी सोच पर निर्भर है कि हम किस चीज को किस प्रकार से लेते हैं। आपका पहला संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, पहला संकल्प। अगर आपका पहला संकल्प शुद्ध है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बीज डाल दिया आपने। मतलब जब कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, उस व्यक्ति को, स्थान को, पदार्थ को देखकर जो आपका पहला संकल्प उठता है वही अंतिम रिजल्ट है उसका। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, आप अभी तक उससे नहीं मिले हुए, और मिलते ही हमारा पहला संकल्प कहां से चलता है? शरीर को देखकर, शरीर को देखकर। अगर पहला संकल्प शुद्ध है, जो भी है मेरा भाई है, बाबा का बच्चा है, तो आपका रिलेशन इतना शुद्ध बन जाएगा कि जिंदगी भर, अपने बीज डाल दिया, वह व्यक्ति कहां भी रहे आपका रिलेशन बिगड़ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। भोजन की थाली सामने आई, क्या है थाली में पता नहीं, बस बाबा को याद करके बोला कि जो भी मिला है बाबा ने दिया है, परमात्मा ने दिया, जो भी थाली में, पहला संकल्प शुद्ध। अपने आप सारी चीजें आपके लिए उपयुक्त हो जाएंगी। लेकिन अगर जज किया ये क्या वो क्या वो क्या, फिर उस जजमेंट में सारा खत्म हो जाता है। पहला संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दुकान में जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने हैं, अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आई पहली नजर में, आपको वो फ्री में भी देना चाहिए फिर भी आप नहीं लेंगे, क्योंकि पसंद नहीं आई पहली नजर में। जो चीज आपको पहली नजर में पसंद आए उसका दाम कितना भी बोले आप लेकर ही रहेंगे। तो कहना यही है, आपके जीवन का जो हर सेकंड का, हर व्यक्ति के प्रति, हर घटना के प्रति जो पहला संकल्प है वही अंतिम रिजल्ट होगा आपका। कुछ आपके जीवन में घटित होता है, सुख या दुख, कुछ भी घटना, अगर आप पहला संकल्प उठाते हैं वाह बाबा वाह, मतलब आपने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया पहला संकल्प, तो दुख वाली घटना भी सुख में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर सुख वाली घटना है तो उसका सुख परम सुख में चला जाएगा, बहुत बढ़ेगा। इसलिए पहला संकल्प, पहली बात हमने सीखी कि रिजेक्ट नहीं करना है। दूसरी बात, पहला संकल्प हमारा बहुत शुद्ध होना चाहिए। सुबह में उठते ही अगर आपका पहला संकल्प शुद्ध है, जो भी आपको चाहिए शुद्ध, तो आपको दिन भर में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना पैसा कमाने के लिए, ना नाम कमाने के लिए, ना पुरुषार्थ करने के लिए, ना खाने पीने के लिए, अगर पहला संकल्प शुद्ध है तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रकृति राह देखती है आपकी कि आप पहला संकल्प कौन सा उठा रहे हैं। सुबह में उठते हैं पहला संकल्प, तो जरूर इसका अभ्यास करके देखिए, आंख खोलते ही जो आपको अच्छा लगता है वह पहला संकल्प उठाइए। हम कहेंगे सबसे अच्छा संकल्प होगा शुक्रिया बाबा, थैंक यू भी बोला, और वो भी किसको, परमात्मा को, बाबा को। तो यह जो पहला संकल्प अगर आप करते हैं उठते ही, तो आप अनुभव करेंगे दिन भर में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अपने आप होगा। आप अनुभव करके देखिए, मैंने कैसे कि हम कहते हैं गुड़ मीठा है, आप विश्वास नहीं कीजिए, हम कहते हैं इसलिए आप खा के देखिए गुड़ मीठा है या नहीं है। आपकी एरिया में तो गुड़ बहुत मिलता है, सभी गुड़ ही है, तो इसलिए कहना यही है कि आप खा के चख के देख लीजिए ताकत क्या है। रात को सोने से पहले लास्ट संकल्प और उठने के बाद पहला संकल्प आपकी जीवन बदल देगा, अपने आप बदल देगा। जब कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं पहला संकल्प चेक कीजिए। आज हम पहले संकल्प की बात कर रहे हैं, हर चीज के लिए पहला संकल्प, जो आपका पहला संकल्प होगा, मुरली के लिए घर से निकल रहे हैं संकल्प कीजिए, आज मुरली बहुत अच्छे से बाबा सुनाएगा मुझे, सारी मुरली ध्यान में रहेगी। योग करने निकल रहे हैं संकल्प कीजिए, आज बाबा बहुत अच्छा योग कराएगा, पहला संकल्प। होगा नहीं होगा आप अनुभव करके देखिए बाद में क्या होता है, पहला संकल्प। हर चीज का पहला संकल्प बहुत अहम है, वही आपका अंतिम रिजल्ट होगा पहला संकल्प। किसी दिन यह एक्सपेरिमेंट करके देखिए, किसी दिन कोई काम काज करते करते अगर आपको चोट लग जाती है चलते चलते, तो बस उस समय शुक्रिया बाबा बोल के देखिए, या वाह ड्रामा वाह, जो चोट 5 दिन में ठीक होने वाली होती है वो 2 दिन में ठीक होती है। अब अनुभव करके देखिए क्या होता है, मतलब अपनी परिस्थिति तो आई लेकिन उस परिस्थिति में आपकी सोच क्या थी, वही सोच उस परिस्थिति को रोक के रखती है या परिस्थिति को हटाती है। अगर आपकी सोच सही है तो परिस्थिति अपने आप निकल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा परिस्थिति क्या लेके जाएगी, इस शरीर को लेके जाएगी, और कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, मतलब शरीर मर जाएगा, इससे ज्यादा तो बड़ा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उस अवस्था में भी अगर अच्छा संकल्प उठाते हैं तो डेफिनेटली मुक्ति जीवन मुक्ति को पहुंच जाएंगे। तो हर क्रिया के बाद का जो प्रतिक्रिया का पहला संकल्प है वह बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जीवन का। कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा भी नुकसान हो, पहला संकल्प शुद्ध रखिए, नुकसान प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। यह धारणा आप करके देखिए क्या होता है। कोई भी बात आवे जीवन में, किसी भी प्रकार की, उसके लिए, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी एनर्जी के अनुसार ही हो रहा है। जितनी आपकी एनर्जी है उसी अनुसार आपके साथ सारी बातें घटित हो रही हैं। एनर्जी जितनी उतनी प्राप्ति। बाबा से हम एनर्जी ले रहे हैं योग करके, मुरली से ले रहे हैं, अच्छे कर्म करके ले रहे हैं, खाना पीना अच्छा खा के ले रहे हैं, शुद्ध हर बात से हम एनर्जी ले रहे हैं। तो जितनी एनर्जी ज्यादा उतने जीवन सुखी। अगर दुख में चल रहे हैं तो एनर्जी कम है, ये सिद्ध हो जाता है। आपके जीवन में आपको हर चीज आपके एनर्जी अनुसार ही मिलती है। दो प्रकार की एनर्जी है, एक भाग्य के रूप में पिछले जन्म से यहाँ लेके आए, भाग्य के रूप में, जिसको कोई ज्योतिषी कहता है कि आपके भाग्य में ये चीज है, ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में जो कर्म किए उनकी एनर्जी अभी यहाँ लेके आए, और इस जन्म में हम जो जो अच्छे कर्म करते हैं उनका फल यहाँ भी मिलता है और अगले जन्म में भी मिलता है। हमारे हाथ में एनर्जी का लॉ किसी के लिए छूटा हुआ नहीं। आपको अच्छा करेंगे अच्छा भी मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा भी मिलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। अगर अच्छा कर रहे हैं उसमें एक बुरा किया तो बुरे का फल नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है, बुरा भी आने वाला है, लेकिन उस समय आपके पास अच्छा ही ज्यादा है इसलिए बुराई का अनुभव एहसास नहीं होता। लेकिन अगर बुराई ज्यादा है तो फिर वह और दुखी कर देते छोटी सी बात। तो जो कुछ हमें मिलता है हमारी एनर्जी के अनुसार ही मिलता है। छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि आपके जीवन में हर बात कैसे आती है एनर्जी के रूप से। बहुत बार यह एग्जाम्पल देते हैं, किसी कपड़े के दुकान में आप गए, 10 कपड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं, महंगे हैं, डिजाइन अच्छी है, कलर अच्छा है, लेकिन आप जो कपड़ा घर लेके आए वही कपड़ा क्यों लाया आपने? कारण एक ही है, उस समय आपकी एनर्जी और उस कपड़े की एनर्जी मैच होती है, इसलिए वही कपड़ा आपके जीवन में आया। अब कितना भी चाहो एनर्जी के सिवाय कुछ नहीं आता। जितनी आपकी एनर्जी लेवल है उसी अनुसार हर बात आपके जीवन में आती है। फिर कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, आपका स्थान आए, घर आए, हर चीज एनर्जी के अनुसार ही आएगी, उसके अलावा नहीं आ सकती। राजयोग में क्या होता है, हम स्वयं को जानते हैं, सुप्रीम से हमारा कनेक्शन करते हैं। आज दुनिया में सारी चीजें तमो प्रधान बन चुकी है, किसी में भी ऊर्जा नहीं है कि जो हमें संतुष्ट कर पाए, हमारी ऊर्जा बढ़ा सके एक परमात्मा छोड़ के। इसलिए हम परमात्मा को याद करते हैं। होता क्या है, आप जिस चीज को साइंस समझ लीजिए, जिस चीज को आप याद करते हैं आपकी ऊर्जा वहां जाती है और उस चीज की ऊर्जा यहाँ आती है, यह नियम बना हुआ है। तो जिस किसी भी चीज को आप याद करेंगे उसी की ऊर्जा आपकी ओर आती रहेगी। हम सुनते हैं ना, संग का रंग लग जाता है। संग कौन सा, बाहर से आप किसके साथ हैं, इससे ज्यादा यहां से आप किसके साथ हैं, बुद्धि से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बुद्धि किसके साथ है, बाहर से कोई कोई ऐसे इंसान है, ऐसे आत्मा है जिन्हें ड्रामा अनुसार पार्ट अनुसार ऐसा कर्तव्य करना पड़ता है जो बाहर से दिखावे के रूप में गलत है, ऐसा कार्य करना पड़ता है, लेकिन उनका मन उस गलत में नहीं होता, करने के लिए निमित्त मात्र कार्य करते हैं, उनका मन हमेशा शुद्धि में होता है। तो कहना यही है, आपकी मन बुद्धि जहां पर है वही आप संग कर रहे हैं। बाहर का संग अलग है। अगर हम बहुत अच्छे महात्माओं के संग में हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहीं और भाग रही, तो हम उनके साथ नहीं हैं, उनके जैसे नहीं बन सकते। और कोई आत्मा है, थिएटर में बैठी है मूवी देखने के लिए, लेकिन उसकी बुद्धि परमधाम में अटकी हुई है, तो वह थिएटर में नहीं है। थिएटर में जो भी मूवी चले उसके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि कहीं और है। तो हमें चेक करना है हमारी बुद्धि कहाँ रहती है। यही है संग। इसी संग का रंग लगता है। हम लाख कोशिश करें अच्छे आत्माओं के साथ रहने की, लेकिन जब तक हमारी बुद्धि उनके साथ नहीं है तब तक हम अच्छे नहीं बन सकते। और हम परिस्थिति अनुसार कैसे भी हो, कितने भी बुरे आत्मा, कोई आत्मा बुरी नहीं होती, पार्ट अनुसार, दिखावे का पार्ट, ऊपर का पार्ट उनका ऐसा है कि जिससे निगेटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, ऐसी आत्माओं के साथ भी रहे, लेकिन अगर हमारी बुद्धि अच्छी बातों में है तो उनका कोई असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता। तो यह एनर्जी की बात कर रहे थे। यह एनर्जी एक्सचेंज होता है, होती है याद से। तो आज दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सतो प्रधान है, जो हमें परिवर्तन कर सके। तो बचा है एक ही परमात्मा बाबा। उसको जब हम याद करते हैं तो हमारी ऊर्जा उसकी तरफ जाती है, उसकी ऊर्जा हमारी तरफ आती है। मतलब हमारे अंदर जो जो निगेटिव ऊर्जा है संस्कारों की, निकलती जाती है और उसकी ऊर्जा हमारे अंदर भरती है। इसके कारण हमारे संस्कार दैवी बनते जाते हैं अपने आप। इसलिए यह संग बहुत जरूरी है बुद्धि का। भक्ति मार्ग में हम बुद्धि से संतों के संग में रहे, बाबा के संग में रहे, लेकिन ज्यादातर संतों के संग में रहे। तो कहना यही है कि इसी बात को समझना पड़ेगा कि संग किस प्रकार का किया जाए, और उस संग में भी रहकर हम किसी को रिजेक्ट नहीं करें। फिर से वही धारणा, जो भी है हमारे ऊपर है। अब चाहे तो यह बातें सुन सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो नहीं भी सुन सकते हैं, मर्जी आपकी है। शब्द तो निकलते जा रहे, सुनना आपके हाथ में है, सुनना या नहीं सुनना। इसलिए ज्ञान जो हम सुनते हैं वह अलग होता है, और जो सुनाता है वह अलग होता है। दोनों ज्ञान अलग होते हैं, क्योंकि सुनने वाला वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है, और सुनाने वाला वही सुनाता है जो वह सुनाना चाहता है। हमारे हाथ में सब कुछ, यहां से किसके संग में रहे। और अगर यह संग ठीक हो गया तो आपके जीवन के सारे संग अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपके रंग में दुनिया रंग जाएगी अगर यह संग ठीक हो गया। तो जो चीज है एनर्जी से आ रही, हर चीज। आज भी हमारे जीवन में दुख है, कारण एक ही है, हमारी ऊर्जा ही उतनी है जितना हमें मिल सके। तो हमें क्या मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास उतनी ऊर्जा नहीं कि हमें सुख मिल सके। तो योग बढ़ाना पड़ेगा, स्वस्थिति बढ़ानी पड़ेगी। तो जब स्वस्थिति बढ़ाएंगे, याद बढ़ाएंगे बाबा की, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। सच में राजयोग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ है, सब कुछ है। बस समझना चाहिए किस प्रकार से, उसका विज्ञान अगर हम समझ जाए तो सब कुछ इसी में है, समझना जरूरी है। तो सारे दिन भर में अब जितने संग करते हैं, या तो वहां आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, या फिर वहां से आप ऊर्जा लेते हैं, आप में भरते हैं। जितना संग इस साकार में रहेगा उतना आप ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, और जितना निराकार में रहेगा उतनी ऊर्जा बढ़ाते जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा संग है बाबा का, और उसके बाद है खुद का। खुद से संग करना चाहिए। आज हम खुद के संग में नहीं रहते, बहुतों के संग में हम रह पाते हैं, अच्छे से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सभी अच्छी पालना देते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम सभी के संग में रहते हैं। लेकिन कभी हमने देखा है कि मैं भी अंदर हूँ जो मुझसे बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, मैं भी हूँ जो मुझ खुद को बहुत अच्छी पालना दे सकता हूँ, मैं भी अंदर हूँ जो खुद से बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। इसलिए खुद के साथ जो आत्मा संग करती है वही बाप के साथ संग कर सकती है, मना बाप के साथ रह सकती है। तो खुद के साथ जब तक नहीं रहते तब तक हम इस जीवन को नहीं समझ पाएंगे। आज कहते हैं सुख चाहिए, किसको चाहिए, मुझे चाहिए, मना मैं कौन हूं, ये पहचान होनी जरूरी है। जब तक टाइटल है नाम मान शान के तब तक हम अंधकार में हैं। जिस दिन टाइटल खत्म हो जाएंगे उस दिन हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं। रोशनी की तरफ किसी और चीज को लेके हम नहीं जा सकते, मना टाइटल को लेके सारे टाइटल निकालने पड़ेंगे, हद के टाइटल, फिर आप अनुभव करेंगे सिर्फ आप बचेंगे, और आप बचने के बाद आपके साथ सिर्फ बाप होगा। तो इस धारणा की अनुभूति करना बहुत जरूरी है, इस बात की, स्वयं की अनुभूति। आज हम दूसरों को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन खुद को पहचानते भी नहीं, दूसरों को जानते हैं लेकिन खुद को पहचानते भी नहीं, मैं कौन हूं। तो अच्छे से पहचानना पड़ेगा, हमें समय निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि हम आत्मा हैं लेकिन कैसी है, मेरा स्वभाव संस्कार क्या है, एक बार चेक कीजिए स्वभाव संस्कार। आपसे कभी अगर गलत कर्म होता है किसी भी कारणवश, वह आपका स्वभाव संस्कार नहीं है। दुनिया में ऐसी एक भी आत्मा नहीं मिलेगी जो सच्चे दिल से चाहे कि मैं गलत करूं, एक भी नहीं मिलेगी जिसकी इच्छा हो सच्चे दिल से मुझे गलत करना है। ड्रामा में बंधी हुई है, कर्मों में बंधी हुई है और उनसे हो रहा है। तो कहना यही है कि अपने आप को पहचान लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए। जब हम अपने आप को समझेंगे तभी दूसरों को समझ पाएंगे, और जब दूसरों को समझेंगे तभी विश्व कल्याण होगा, स्व कल्याण होके। नहीं तो आप कितना भी लाख कोशिश करें दूसरों को समझने की, दूसरों को ज्ञान देने की, लेकिन जब तक उस ज्ञान की धारणा हमारे अंदर नहीं है वह ज्ञान दूसरे धारण कर ही नहीं सकते। पहले मैं, फिर विश्व। इसलिए अपने अंदर झांकना है। बहुत बाहर घूमे हम, बहुत बाहर भटके, इस उसका हर किसी का झगड़ा, हर किसी की हर बात सुनते सुनते थक गए। अभी रुक जाइए, अपने आप को देखिए। अपने अंदर इतने झगड़े लगे हुए हैं वही समाप्त नहीं हो रहे, दूसरे की कहाँ समाप्त करेंगे। कभी समय निकाल के अपने साथ बैठिए। जब तक हम खुद के साथ नहीं बैठते तब तक परिवर्तन नहीं होगा। खुद का साथ ही परिवर्तन दिलाएगा कुछ भी करके। शरीर अलग चीज है, नाम मान शान धन अलग चीज है, ये उससे अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। सुनना और धारण करना बहुत अलग बात है। ज्ञान अच्छा लगता है हमें लेकिन अगर उस ज्ञान की धारणा नहीं होती तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। आत्मिक स्थिति अगर नहीं ला पाते तो सुनकर कोई फायदा नहीं है, लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी आयु निकल जाती है भक्ति मार्ग की तरह सुनने और सुनाने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज से एक धारणा करेंगे खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। दुनिया के साथ बहुत बिताया, खुद के साथ कभी आधा एक घंटा अपने साथ बैठकर देखिए मुझे कैसे लगता है, खुद की खातिरी कर दीजिए।
खुद की, दूसरों की बहुत की हमने। कभी किसी दिन यह एग्जाम्पल भी बताते हैं, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, सब कुछ देखते हैं। बस एक दिन आप प्रयोग कीजिए, आप ही गेस्ट हो और आप ही बनाने वाले हो, आप ही आपकी खातिरदारी कीजिए बस एक दिन के लिए, फिर देखिए कैसे लगता है आपको, फिर आपको पता चलेगा कि आप कुछ हो। अभी तक क्या किया है हमने, सबको पास किया है और खुद को दूर किया है। अभी उल्टा करना पड़ेगा, खुद को पहले पास करना पड़ेगा, नजदीक लाना पड़ेगा, खुद से पहचान करना पड़ेगी। तो पहले ये सबसे बड़ी धारणा है स्वयं की पहचान, जितना हो सके खुद के साथ समय बिताइए, फिर आपको जीवन का आनंद मिलेगा। आज हम खा रहे, पी रहे, चल रहे, घूम रहे, लेकिन आनंद नहीं मिल पा रहा, संतुष्टि नहीं मिल पा रहे। कारण एक ही है, हम नहीं कर पा रहे, हम देह अभिमान में कराते जा रहे, मतलब हमसे होता जा रहा है, हम खुद नहीं कर रहे। अगर हम आत्मिक स्थिति में भोजन करते हैं, आत्मिक स्थिति में, तब आप उस भोजन का आनंद ले पाएंगे, नहीं तो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ खाइए, जो भूख है वो कभी नहीं मिटेगी। भूख मना, पेट की भूख अलग है, वासना की भूख, इच्छाओं की भूख खाने की, वह कभी नहीं मिट सकती, चाहिए। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम आनंद नहीं लेते, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में पहनते हैं और देह अभिमान में चलते हैं, तो हमारी संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए और चाहिए। अगर जिस समय आपके जीवन में और चाहिए, बाबा का ज्ञान और बाबा छोड़ के लौकिक बातें, और चाहिए आता है, समझ लीजिए हम देहाभिमान में हैं। और जिस समय में बिंदी लग जाती है, बस हो गया, समझ लीजिए आत्माभिमानी बने। छोटी सी बात है, जहां इच्छा है वहां देहाभिमान है, और जहां इच्छा ही नहीं है, कंप्लीट जीरो इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या, वहां आप अनुभव करेंगे कि कुछ नहीं है, बस सब कुछ बिंदी लग गई, मैं मुझ में हूं। छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत बार हम अनकॉन्शियसली हर कर्म करते जाते हैं, अनकॉन्शियसली मतलब हम ध्यान नहीं होता हमारा उस कर्मों के ऊपर और हम करते जाते हैं। आपको ये बात सुनने के बाद शायद से आश्चर्य लगेगा, उस समय आपसे कोई और आके आपका कर्म करा के चला जाता है। अगर आप कोई आपकी थाली में कोई अच्छे पदार्थ है जो आपको बहुत पसंद है, अगर आपका ध्यान नहीं है उस समय, उस भोजन को करने समय, तो उस समय जिनको वह पदार्थ पसंद है वह बाहर भटकने वाली आत्माएं आप में प्रवेश होती है, उसको खाकर चली जाती है। इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिलती भोजन करने की, क्योंकि किसी और ने भोजन किया। जब आप ध्यान में नहीं हो, मना अवेयरनेस में नहीं हो, जागृति में नहीं हो, तब उस समय कोई और आपसे कर्म करा के चला जाता है। क्रोध करने की हमारी इच्छा नहीं होती, झगड़ा करने की हमारी इच्छा नहीं होती, एक छोटा सा इरिटेशन का संकल्प उठता है, कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, इरिटेट होते हैं, लेकिन अचानक से इतना बड़ा क्रोध करते हैं कि बाद में पता चलता है कि ये कैसे हो गया, मुझे तो ये नहीं करना था, इतने सारी बातें निकली, ये सारा कुछ हो गया, कैसे हो गया। जिस समय आपने थोड़ा सा इरिटेशन क्रिएट किया, आपके आसपास में जो भटकने वाली आत्माएं बहुत है विश्व में, जो गुस्से वाली है वो आपके अंदर प्रवेश करती है और वो उसका गुस्सा आपके द्वारा निकालती है, आपको पता नहीं चलता आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उसको मजा आता है उसमें, मना आपसे विकर्म कोई और कराता जा रहा है, इसलिए ध्यान में रहना, अटेंशन में रहना, अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है कि मैं कर रहा हूं हर बात। अगर बोल भी रहे हैं तो अगर अटेंशन नहीं तो गलत शब्द निकलने के चांसेस है, संभावना है। तो उस समय अवेयरनेस में रहिए अपने आप, जितने शब्द आपने बोले और अगर उन शब्दों को आपने सुना है, जितने बोले माना वह आपने बोले हैं, जो आपने बोला उसको आपने नहीं सुना है, वो किसी और ने बुलवाए आपसे, सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आपने जो किया वो आपको पता है आपने क्या किया, अगर करने के बावजूद आपको पता नहीं आपने क्या किया, माना आप वहां नहीं थे। बहुत बार हम मुरली पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते एक दो पेज पूरे भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या पढ़ा, क्या था उस पेज में, माना हम वहां थे ही नहीं। कोई कर्म करते करते कर्म पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता कर्म पूरा हो गया, माना उस समय हम वहां नहीं थे। अच्छा होता है ना होते हुए अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा हो जाता है तो बोझा आपके ऊपर आता है। इसलिए जागृति में रहना बहुत जरूरी है, स्वयं के अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके स्वयं को जागृति में रखिए, अवेयरनेस में रखिए। इससे क्या होगा, दो फायदे हैं। एक है आपसे कोई विकर्म नहीं होगा, क्योंकि जब विकर्म होता है, हो रहा है, पता भी चले फिर भी नहीं होता, बंद हो जाता है होना। अगर आपको पता है कि अभी यह गलत हो रहा है, जान भी जाए आपकी गलत हो रहा है, तो तुरंत आप उस गलत को बंद कर देते करना। लेकिन अगर जान पहचान ही नहीं क्या हो रहा है तो होता जाता है। तो पहला फायदा गलत नहीं होता। दूसरा फायदा, हर कर्म का हम आनंद लेते हैं। अगर भोजन आप कर रहे हैं तो भोजन आप ही ने ही किया तो आपको उस भोजन का आनंद मिलेगा, क्योंकि आपने किया, क्योंकि आप अवेयरनेस में थे। और न सिर्फ आनंद बल्कि संतुष्टि मिलेगी उस कार्य को पूरा करने की। तो इस प्रकार स्वयं को अवेयरनेस में रखना है, आत्म जागृति में रखना है। तो जितना हो सके अपने आप को अपने आप में लाने का प्रयास कीजिए। हमारे पास सब कुछ है, बस हम खो गए हैं इस दुनिया की भीड़ भाड़ में, हम खुद खो गए हैं। हम ये सारे पर्दे लगाकर बैठे हैं, सारे अलग चेहरे लगाकर बैठे हैं, शरीर के, नाम के, मान के, शान के, और खुद को खो दिया है इन चेहरों में। तो ये सारे चेहरे हटा दीजिए। कम से कम हम कहेंगे सारे दिन भर में एक घंटा तो ऐसा निकाल लीजिए जिस समय आप आपके साथ हैं, बस आप ही है वहां पर, कोई और नहीं। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद आएगा। अगर आत्मिक स्थिति में आप एक दिन भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी है, तो आपको जीना 100 साल का लगेगा, बहुत बड़ा जीना लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि एक दिन, आप रहा देखेंगे अरे दिन कब खत्म होगा, हर सेकेंड आप आनंद लेते जाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है। तो सारा खेल आत्मिक स्थिति से शुरू होता है। जितना हो सके अपने आप को इस स्थिति में पक्का कीजिए। बाकी आप जितना करेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस में अच्छा होगा, लेकिन वह अच्छा है कह नहीं सकते। देहाभिमान में बॉडी कॉन्शियस में अगर हमने किसी को अच्छा भी बोला तो वह उसके लिए शाप भी हो सकता है। लेकिन आत्मिक स्थिति में हमने किसी को गाली भी दी, गाली निकलेगी नहीं, लेकिन दी भी तो भी उसके लिए वो वरदान हो सकता है आत्मिक स्थिति में। कहना यही है, सब कुछ आत्मिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। हर कर्म में आप चेतना समझते हैं, जो आप समझ रहे हो उसी प्रकार आपसे वार्तालाप हो रहा है। आपकी समझ ही सब कुछ है। एक बार समझ बदल गई तो जीवन बदल जाती है। अगर हम झूठी समझ में जीते हैं तो हम जीकर भी मरते रहते हैं, और अगर हम सच्ची समझ में मर भी जाए तो मरकर भी जिएंगे। सच्ची समझ मैं कौन हूं, झूठी समझ शरीर। तो सारी झूठी समझ को निकालना है। कभी भी व्यवहार करते समय हर आत्मा से आत्मिक स्थिति वाला व्यवहार करके देखिए क्या होता है। भला पद पोजीशन में जो भी है, पद पोजीशन में जो भी है, लेकिन आप एक आत्मा से व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार अलग चीज है और दो व्यक्ति व्यवहार करने वाले अलग हैं। तो व्यवहार के कारण करने वालों के बीच में दरार क्यों आए? सिंपल सी बात है, किसी आत्मा को झाड़ू लगाने का काम देना है। हम किसी कंपनी में हैं, हमारे अंडर कोई काम करते हैं वर्कर्स, उनका काम है झाड़ू पोछा लगाना, वह भी आत्मा है, वह उनका पार्ट है। लेकिन एक आत्मिक भाव से हम उन्हें तो कह तो सकते कैसे करो। बॉडी कॉन्शियसनेस में उनके ऊपर रोग दिखाना कैसे लगेगा आप सोचिए। अगर हमारे ऊपर कोई रोग दिखाए तो हमें पसंद नहीं है, तो किसी और को कैसे पसंद होगा। हम माँ बाप हैं, लेकिन बच्चा भी एक आत्मा है। हमारे माँ बाप हैं, वह भी आत्माएं हैं। तो हमें हर किसी से आत्मिक स्थिति वाला ही व्यवहार करना है। यही व्यवहार संतुष्टि देता है, स्नेह देता है। नहीं तो फिर अगर हम समझेंगे कि हम बड़े बैरिस्टर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके साथ भी वैसा व्यवहार होगा, क्योंकि हमने खुद की पहचान बदल दी कि मैं ये हूं। तो दूसरों को अगर हम समझेंगे हम ज्ञानी हैं, तो दूसरों को अज्ञानी समझेंगे हम, ये सत्य है। हम श्रेष्ठ हैं तो दूसरों को समझेंगे कनिष्ठ है। लेकिन हम समझेंगे हम कुछ नहीं, बस एक आत्मा है, उसकी संतान है, तो सामने वाली आत्मा कैसी भी हो उसको भी हम आत्मा ही देखेंगे। फिर जो व्यवहार होगा इतना शुद्ध होगा, स्नेहपूर्ण होगा, कि उन आत्माओं को लगेगा कि आपसे जुड़े रहे, क्योंकि आपका व्यवहार शुद्ध हो गया। मतलब दे क्या रहे हो लौकिक में, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप यहां से क्या छोड़ रहे हो उनके लिए, क्या स्मृतियां छोड़ रहे हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अंदर से नहीं हो पा रहा है संस्कारों से, दिखावे के लिए ऊपर से तो कर सकते हैं प्यार का व्यवहार, कम से कम दिखावे के लिए, क्योंकि यह व्यवहार ही जीवन बदल देता है सब कुछ। इसलिए जितना हो सके हम धारणा को पक्का करेंगे आत्मिक स्थिति। तो आज के छोटे से सेशन में हमने क्या सीखा है कि किसी भी बात को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। जो हमारा है, तन मन धन बाबा ने दिया हुआ है, बाबा का है, ऐसा समझकर चलेंगे। अगर बाबा की चीज को हम रिजेक्ट करेंगे तो कैसे लगेगा आप सोचिए। इस तन भी बाबा ने दिया है, आप आत्मा भी उसी की हो, आपका धन भी उसी का है, आपका मन भी उसी का है, तो क्या होगा, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जब कोई भी बात है, फल है, कोई अन्न है, मंदिर में भगवान के सामने जब जाता है तो वह अन्न अन्न नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। वैसे आपने क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर आप अपने आप को आपके लिए रखेंगे, आपके लिए बचा कर रखेंगे, तो आपके पास ताकत नहीं है अपने आप को संभालने की। तो इसकी कोई गलत इस्तेमाल कर सकता, इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आप अपने आप को उसको सौंप दीजिए। अगर सौंप दिया तो रिजेक्शन का सवाल ही नहीं आता। अब देखिए एक मास में जीवन परिवर्तन होगी, कोई रिजेक्शन नहीं। दूसरी बात, हम हर किसी से प्यार से व्यवहार करेंगे, आत्मा वाला। हमारी पद पोजीशन अलग है, हमारा ज्ञान अलग है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा एक पलड़े में है, और आपकी आत्मिक स्थिति एक पलड़े में है। कितना भी ज्ञानी हो लेकिन दूसरों को अगर गलत नजर से, मना मैं ज्ञानी हूं दूसरे अज्ञानी हैं, इसे देखता हो तो वह ज्ञानी नहीं, वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। कितना बड़ा भी सेवाधारी हो, कितना बड़ा भी योगी हो, अपने आप को श्रेष्ठ समझ के दूसरों को कनिष्ठ समझता है, वो सेवाधारी योगी नहीं है। आपकी धारणा आपकी है, कितनी बड़ी भी ऊंची धारणा है, आपकी धारणा होने के कारण आप तो श्रेष्ठ बने, जरूर श्रेष्ठ है, लेकिन आप श्रेष्ठ बने इसका मतलब दूसरे कनिष्ठ बने यह नहीं होता, दूसरे कम नीचे आ गए यह नहीं होता, आपका आपके पास। तो आज से हम हर किसी से आत्मिक स्थिति वाला व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। और कोई भी बात आए जीवन में, हमारा पहला संकल्प होगा वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। अब देखिए अनुभव करके जीवन कैसे परिवर्तन होता है अपने आप। और जितना हो सके आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाइए, जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाएगा आप अनुभव करेंगे बहुत ऊपर उठ रहे हैं। समय निकाल के हर शब्द आत्मिक स्थिति में सुनने का बोलने का प्रयास कीजिए, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अगर आज भी आपकी कर्मेंद्रियों से गलत कर्म हो रहे हैं, ड्रामानुसार, हम आपको दोष नहीं दे रहे, ड्रामानुसार हो रहे हैं, तो आपके जिन कर्मेंद्रियों से गलत कर्म हो रहे हैं उन कर्मेंद्रियों को बाबा के सामने सरेंडर कर दीजिए। अगर आंखों से गलत देख रहे हैं, इतना ही संकल्प उठा दीजिए कि यह आंखें बाबा की हैं, आंखों को बोल दीजिए आपको जो देखना है देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी हो वो देखेगा क्या करना है, मेरी नहीं हो आप। यह तन है, जिसको इस तन को आप बोल सकते हैं कि आप उसके हो, आपको जहां जाना है आपकी मर्जी, आप जानो और वो जाने, बाप जाने, मुझे पता नहीं, मैं इस तन से अलग हूं। मन कितना भी निगेटिव सोच रहा है, एक ही संकल्प कीजिए कि मन बाबा का है, तुझे जितना निगेटिव सोचना है सोच ले, मैं तुझे फ्री करता हूं। देख लीजिए मन वही रुक जाएगा। जब हम मन को दबाएंगे वो और उछलेगा, और मन को बोलेंगे तू बाबा का है जो करना है कर ले, वही रुक जाएगा। छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे को ना बोला तो वो और करेगा, और कर बोला तो रुक जाएगा। ऐसा हमारा मन है, छोटा बच्चा है। तो यह धारणा करेंगे सब कुछ बाबा को समर्पण, और जितना हो सके पहला संकल्प आपके दिन का शुभ उठा लीजिए, परिवर्तन निश्चित है। और बाबा के साथ हक से रहिए, वह आपका पिता है, हक से उसको आप जो सुनाना चाहते हो, जो कहना चाहते हो आप बता दीजिए। अगर आपकी मुरली ठीक से नहीं हो रही, योग ठीक से नहीं हो रहा है, बाबा को कह दीजिए मेरी मुरली ठीक से नहीं हो पा रही, आपको जैसे कराने करा दीजिए, योग नहीं हो रहा है आप करा दीजिए, परिवार में ऐसी ऐसी बातें हो रही आपको जैसे जो कराना है आप करा दीजिए। हर बात बाबा को सरेंडर कीजिए। घर से बाहर निकल रहे हैं, कह दीजिए बाबा को कि ऐसे ऐसे कार्य के लिए बाहर जा रहे, जो भी सेवा करानी हो आप करा दीजिए। कार्य भी होता है, सफलता मिलती है और सेवा भी हो जाती है। माना हर कार्य करने से पहले बाबा को संकल्प रखिए, भोजन बनाने से पहले भी संकल्प कीजिए कि बाबा आपके बच्चों के लिए, हमारे परिवार के, लेकिन बाबा के ही बच्चे हैं ना सभी, आपके बच्चों के लिए भोजन बन रहा है, जिस प्रकार बनाना है, जो शक्ति डालनी है आप कर दीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो इस प्रकार यह धारणा हम करते रहेंगे, और जितना हो सके मुरली को बढ़ाते जाइए। मुरली जितनी बढ़ेगी उतना परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। सुबह में भी सुनाया था क्लास में, बॉम्बे में जो आत्माएं जुड़ी हुई है उनसे कहा है कम से कम 5 से 9 मुरली रोज करनी। हम इतनी ही नहीं कहते, आपको ज्यादा होगी, कम से कम 2 से 3 तो कर सकते हैं, मुरली में बहुत ताकत है। एक आत्मा ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक दिन में 21 बार मुरली की, 21 बार 3 दिन तक स्थिति नहीं हिली। दूसरी आत्मा ने एक्सपेरिमेंट किया, एक दिन में पूरा निकाल के 42 बार मुरली की, 7 दिन तक स्थिति नहीं हिली, 7 दिन तक। मुरली में बहुत ताकत है, जितनी मुरली बढ़ेगी उतना सब बढ़ेगा। देखिए ज्ञान के बिना योग धारणा और सेवा नहीं हो सकती, तो ज्ञान है मुरली, मुरली से ही ज्ञान शुरू होता है। जब मुरली ठीक तो योग धारणा और सेवा अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जितना हो सके हम कहेंगे कम से कम 2 से 3 बार मुरली करने का प्रयास कीजिए। देखिए भोजन कर रहे हैं, अगर मोबाइल है तो साइड में लगा भी दिया, भोजन होते होते बनाते खाते मुरली हो गई। कोई और काम है कर सकते, सुनते सुनते कार्य करते करते साइड में लगा दी मुरली, अंदर उतर रही है, आपने प्ले करके रख भी दी साइड में, अंदर उतर रही है, भले आपका ध्यान नहीं है पूरा लेकिन उतर रही है। तो ऐसे करके मुरली बढ़ाते जाइए। हमारे पास बहुत समय है, कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर रोज उसी रास्ते को क्या देखना, उन्हीं पेड़ को क्या देखना, उन्हीं घरों को उन्हीं गांवों को क्या देखना, इससे अच्छा मुरली लगा दीजिए और सुनते सुनते जाइए। तो इससे क्या होगा, जितनी मुरली बढ़ेगी उतनी स्थिति बढ़ेगी। सच में बहुत ताकत है। एक आत्मा के घुटने में प्रॉब्लम था, पैर में भी प्रॉब्लम था, बहुत साल हो गए जा नहीं रहा था। उनको संगठन के एक सिस्टर ने कहा कि आप 21 बार मुरली कर दीजिए, देखिए क्या होता है। मैं भी, उन्होंने कहा शायद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ऐसे हमें लग रहा है, अब कर दीजिए। उन्होंने की मुरली, दो दिन में उनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और उनकी सेंटर की दीदी को भी उन्होंने बताया कि 21 बार मुरली करने से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। मुरली करने के वक्त आप बाबा से जुड़े रहते हैं और एक हायर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं मुरली सुनते वक्त, पढ़ते वक्त। उसके कारण क्या होता है कि अपने आप अंदर परिवर्तन शुरू होता है, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं अपने आप सॉल्व होते हैं। अभी तक हमने बहुत से आत्माओं को देखा है, मुरली पढ़ने के बाद, सुनने के बाद घर में धन बढ़ता गया, परिवार सुखी होता गया, शरीर के प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। मुरली की ताकत साधारण नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। तो इसे जितना हो सके करने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए, और कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़िए। लास्ट एक कहना चाहेंगे आपसे, सच में अगर आगे चल के बाबा, बहुत बार क्लास में ये बात हमने कही है, फिर भी आपसे कहते हैं, अगर आगे चल के भगवान परमात्मा बाबा आपके सामने आकर आपको बोलता है, दो में से एक बात को चॉइस करना है, एक ही मिलेगी कोई बात, या तो स्वर्ग या फिर बाबा, लेकिन एक लिया तो दूसरा नहीं मिलेगा, तो आप क्या चॉइस करेंगे? देखिए, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या करेंगे फिर? देखिए क्या होता है, अगर आगे चल के बाबा ने बोल दिया किसी मुरली में कि सतयुग नहीं आएगा, ऐसे चलते रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? निश्चय नीचे आएगा, सतयुग आने ही वाला है। लेकिन जो सतयुग के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो सतयुग के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें न सतयुग मिलेगा न बाबा मिलेगा। इसमें होगा क्या पता है, जो सतयुग जो चाहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब बाबा से प्यार नहीं, कुछ कोई चीज मिलने वाली है इसलिए हम तुझसे प्यार कर रहे हैं, मने स्वार्थ हो गया ना। अपने पिता से प्यार नहीं है, पिता कुछ दे रहा है तब तक प्यार है, यह भी लौकिक के जैसा हो गया। आज लौकिक में चल रहा है, पिता की प्रॉपर्टी है तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, प्रॉपर्टी एक बार बच्चों को दे दी, घर से बाहर निकालने में भी समय नहीं लगाते। तो उसने बोल दिया सतयुग, तो जो सतयुग की आश में योग कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतयुग में आना मुश्किल होगा, न बाबा मिलेगा न सतयुग मिलेगा। तेल गेला तूब गेला हाथी रायला धुपाटना, ऐसा हो जाएगा। और जो सच्चे दिल से बाबा से प्यार करते हैं 100% वह सतयुग में आने वाले हैं। आपका प्यार ही आपको सतयुग में लाएगा बाबा से। फिर आपके अंदर धारणा, अपने प्रयास किया जितना करने का, पुरुषार्थ करने का प्रयास किया, लेकिन एक सच्चे दिल से जो प्यार था वही प्यार आपको सतयुग दिलाएगा, यही निश्चय की एग्जाम। तो आगे चल के कुछ भी हो जाए अपनी बुद्धि को नहीं हिला दीजिए, बाप और आपका रिश्ता ना बदल पाए, कुछ भी हो जाए मतलब उसने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन वो मेरा बाप है। बाप ने प्रॉपर्टी दी या नहीं दी, फिर भी बाप तो नहीं बदल सकता, बाप तो बाप ही है। तो बाबा से कुछ मिले या ना मिले, आपका और बाबा का रिश्ता कभी ना बदले, परमात्मा और आपका रिश्ता कभी ना बदले। फिर आप सच्चे दिल से खुद का शुक्रिया अदा करेंगे और बाप का कि मैंने पाया, पाना था सो पा लिया। ठीक है, बहुत खुश रहिए अपने जीवन में। ओम शांति।